તારીખ 29/9/1993 મંગલ પ્રારંભના વિષય ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 24.
પર્યાય ને અહમ ભૂતિ છે તો પૂર્ણતા કે બિના જે કિયા જાતા હૈ તો એસા અનંત ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ જબ તક પર્યાય દ્રષ્ટિ હો સકતી હૈ તબ તક પર્યાય મેં હોને વાલી જ્ઞાન વ પ્રતાપી સમૃદ્ધિ વિશિષ્ટતા પ્રારંભ અભિનિવેશ કો ભી સાથ સાથ ઉત્પન્ન કર લેતી હૈ क्यों ऐसा क्यों हुआ? पर्याय दृष्टि मैंने मूल है कि पूर्णता के लक्ष्य से मंद हो जाता है, इसलिए वहां अहम नहीं होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक कहा
प्राय
दुनिया
ऐसा होती है प्राय
प्रायनिवेश को भी साथ साथ उत्पन्न कर देती है। बहुत करके ऐसा होता है, कोई जीव बच जाता है तो कोई बच जाता है, बाकी देखे
देखने
क्रिया करने वाले में से प्राय अहम हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और ये जो अनुभूति है वो दर्शन योग वृद्धि का ही कारण होता है, दर्शन और बढ़ता है, कार्यक्रम और मंद होता है धार्मिक क्रिया के निमित्त से, और दर्शन हो तीव्र होता है और लगता है कि नहीं हम तो धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में दर्शन मोह को बढ़ाते हैं, यानी ऐ धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, ये हालत होती है। अति यदि उक्त यथार्थ प्रकाश है युक्त उक्त मैंने सरलता के वर्ष पूर्वक कोई भी धार्मिक कृत्य करने में आए तो ही अभिनिवेश से बचा जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक तो माथे सुई दूर हो तो बच सकता है, दूसरा ये सिद्धांतिक तौर से यथार्थ शुरुआत हुई हो तो ही बच सकता है, इसके सिवा बचने का कोई जगह अवकाश रहता नहीं है। ये परिस्थिति
किस
आधार से अहम नहीं होना चाहिए? जैसे कि कोई ऐसा समझ लिया कि अहम करना अच्छा नहीं है, तो हम धार्मिक क्रिया करते हुए भी हमें अहम नहीं करना है, तो अहम नहीं करना में अहम तो मान का प्रकार होता है, तो मान के सामने क्या करेंगे तो हम नहीं होगा, फिर नम्रता पालेंगे, तो फिर हम नम्रता पालते रहे, नम्रता पालते रहे, नम्रता नम्रता से हम हमारे सब प्रकार की प्रवृत्ति करें, नम्रता के साथ ही करें, नम्रता के साथ ही करें, लेकिन हम नम्रता करने वाले हैं इसका हम कैसे मिटाएंगे? हम तो नम्रता करने वाले, हम तो अहम करने वाले नहीं, हम तो नम्रता करने वाले, इसका अहम हो गया तो कहाँ जाएंगे? ये बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ज्ञान ने ये सिद्धांत दिया कि तुम यहाँ लक्ष्य रखो तो तुम पूरा पूरा बच सकता है, सेफगार्ड हो गया। अगर तुम्हारा लक्ष्य यथार्थ नहीं है पूर्णता पर, तो नम्रता का भी अहम आ जाएगा, दूसरा अहम छोड़ने को जाओगे, नम्रता कर लोगे, क्योंकि इसकी युक्ति है वो नम्रता करने की, तो उसका अहम आ जाएगा। जैसे मैं बताया मुसलमान लोग पैदा गमछा पहनते हैं, उधर करके आते हैं ना मक्का मदीना इलाके पर, तो उसके पैजामा है तो करीब 2-3 इंच छोटा रखते हैं, ऊंचा पहनते हैं। तो हमारे कस्टमर थे व्यापार में, तो उनके साथ मिलने का ऐसा व्यवहार था कि सर आप ऐसा ड्रेस क्यों पहनते हैं? तो देखिए लोग तो जो हज करके आते हैं तो हमारे कुरान में वो बात लिखी है कि कहीं भी हमारी कितनी भी संपत्ति हो, कितने भी हम संपन्न हो, तो उसके अहम बढ़ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो ऐसा पहनने से अभिमान नहीं आता है। क्या युक्ति लगाई मैंने कि कपड़ा कुछ छोटे पहनने से अभिमान नहीं आता है, इसलिए हम ऐसा पहनते हैं। तो क्या है कि अवगुण तो कोई पसंद नहीं करते, अभिमान है वो अवगुण है, ऐसे हमें अनेक प्रकार के जो अवगुण है वो तो कोई पसंद नहीं करते, धार्मिक जन तो कोई पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उस अवगुण को स्वभाव करने के लिए, नाश करने के लिए सम्यक पद्धति नहीं है, मनमानी पद्धति के साथ लोग कर लेते हैं, हम ऐसा करेंगे तो हमें और मंडी होगा, ऐसा नहीं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, ईश्वर करता है, तो कोई भी काम हम कर लें लेकिन हमारा नहीं माना, भगवान ने किया, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर वाला सब करता है, कुछ नहीं करता है, हमको हमको इसका अभिमान नहीं करना है। तो उन्होंने एक युक्ति बना ली अभिमान टालने के लिए। लेकिन एक ऐसे प्रकार के जो परिणाम है, भले उसमें मान का कषाय शुरू नहीं होता होगा, मत रहता होगा, लेकिन ऐसे मद कषाय भी वस्तु के स्वरूप के आधार से नहीं हुआ है, कल्पना के आधार से हुआ है, युक्ति के आधार से हुआ है, जबकि वो चीज टिकने वाली नहीं है। हमारे जो अवगुण सम्यक प्रकार से अभाव होंगे तो सादी अनंत का अभाव नहीं रहेंगे, उसमें टिक पाएंगे। कल्पना अपने युक्ति से हम किसी अवगुण का अभाव करना जाएंगे तो ये अवगुण मंद हो जाएगा, अभाव तो नहीं होगा लेकिन वो कुछ काल तक टेम्पररी मंदता आएगी, बाद में दशम मोह तीव्र होने से मां फिर ये कार्यक्रम होगी पनप जाएगा, जिसका मूल स्वरूप है उसके जो शाखा प्रशाखा जितने भी पुष्प पत्र फल फूल है वो पनपेंगे ही पनपेंगे। तो हमारी जो दोष को टालने के लिए अभाव करने की कार्य पद्धति है वो इतनी सम्यक है कि मूल में से उसका अभाव करके खाली अनंत काल तक कहीं भी दोष नहीं मिले ऐसी स्थिति में आना, यही हमारा ध्येय है, पूर्णता का ध्येय है, यही हमारा ध्येय है। तो उसी के अनुसरण करके हम आगे बढ़ेंगे।
दो कारण बताया
जी,
दो कारण बताए, एक तो पूर्ण का लग सदगुरु का मत आज उनके दोनों प्रबल कारण,
प्रबल कारण तो सदगुरु का योग है क्योंकि वो ये सजीवन मूर्ति है, किंतु ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, नहीं मिले तो क्या करें, मिलना चाहिए और मिले तो पहचान होनी चाहिए, वरना मिले नहीं मिले तो बराबर हो जाएगा। तो प्रबल कारण तो वो है लेकिन मिले जब तो क्षेत्र में आगे दिखाई देने धार्मिक क्षेत्र में भी इस महत्व के विषय के प्रति प्राय अनभिज्ञता वर्तते होने से ही अधिकतर ने शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके अथवा सब त्यागादि करके भी सम्यकवादी मार्ग को प्राप्त नहीं हो सके। यही कारण है कि कैसे शुरू होना चाहिए हमारा कार्य पद्धति का प्रारंभ, किसी को हमें पता नहीं है। जिसका कारण ज्ञानी की आज्ञा से नहीं अपितु स्वयं की कल्पना है, मनमानी धार्मिक प्रवृत्ति करने से दर्शन को वृद्धिगत होता है, वह कारण है। इसी कारण से ये बुद्धि है। यद्यपि धार्मिक क्रियाओं से चारित्र हो या किंचित मंद होता है, तथापि उसी के अहम से दर्शन हो यानी मिथ्या को तीव्र हो जाता है, जो तो संसार परिभ्रमण का मूल है। यानी कल्याण के मार्ग को नहीं जानते हुए अकल्याण के मार्ग को कल्याण का मार्ग मान लेते हैं, ये संसार होने का कारण है।
यानी कि आज्ञा तो सब सिख रहने वाली मार्ग की है,
ज्ञानी की आज्ञा तो पूर्णता से शुरुआत करती है, पूर्णता के
शुरुआत के
शुरुआत के संदर्भ में पहले बात वो आएगी कि पहले आप दर्शन को खत्म करो, तब सिद्धांत पालने में कार्यक्रम बंद हो सकता है लेकिन विमुख की भूमिका में दर्शन को की मंदता नहीं हुई तो ये चारित्र की मंदता का अहम आए बिना नहीं रहेगा। दर्शन जो मन होता है यथार्थ प्रकार से कब होता है कि जब इसका अनुकरण बैठता है तब, वरना ओक संन्यास है देवगुरु शास्त्र सबका हो शास्त्र अध्ययन में भी हमारे मति विपर्यास नहीं करते हो, जैसा उनका भावार्थ भावार्थ हो उसको हम समझ सकते हो, तो दर्शन मूल मंद हो सकता है।
भाव
का सुन नहीं हुआ
तो
ओक संज्ञा से होगा, तो ओक संज्ञा से जो दर्शन मूल मंद हुआ तो ओक संज्ञा से उन संज्ञा के अलग निवृत्ति नहीं की तो फिर ये दर्शन को आगे जाकर उसके लोग हो जाएगा। से करते करते नहीं वो संज्ञा मिटाने का कोई दूसरा उपाय है
मार्ग,
मार्ग में ऐसा है मार्ग कहाँ से एक अपना दूसरा रास्ता पकड़ता है वो हमें समझना है। जैसे कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानते हैं पर शास्त्र का अध्ययन भी परमात्मा का आचार्य करते हैं, यथार्थ रूप से दर्शन हमारा अनुभव टूटता जाए और टूटता टूटता वहां तक टूटता जाए कि वो उत्सम के योग्य होकर के उत्सम समय दर्शन को प्राप्त कराए। ये लाइन कहां से किस तरह से चालू होती है ये मुद्दे का सवाल है। जब ये मुद्दे का सवाल है तो गुरुदेव ने इसी पर प्रकाश डाला है कि अगर तुम्हें सही लाइन पकड़नी हो तो पहले अपना ध्येय को निश्चित कर लो, फिर ध्येय निश्चित करने से परिणाम के साथ ध्येय को अनुसरण करने लगेगी स्वतः ही अपने आप, ये ध्येय को अनुसरण करके ही लगेगी तो वहाँ उत्सम का उत्सम होने का अवसर आएगा दर्शन होगा। अगर ऐसी व्यवस्थित पद्धति नहीं आएगी तो जो भी सच्चे देवगुरु शास्त्र है जैसा भी वो संन्यास है भले गुरु भी भक्ति किया हो शास्त्र भक्ति किया हो शास्त्र का जाय किया हो दर्शन हो कुछ अंश में और संन्यास मंद हुआ तो आगे जा करके फिर तीव्र हो जाएगा। लंबा काल अगर रहेगा तो ये लंबा काल नहीं रहा कि प्रकृति ऐसी है मोह की कि लंबा काल रहने से एक ही स्थान में या तो हम आगे बढ़ सकते हैं या तो हम पीछे जाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो लंबा काल वो रहने वाला नहीं, पीछे जाते हैं तो लंबा काल हो जाएगा क्योंकि परिणाम एक चाल है, परिणाम स्वतः ही चाल है जीव की और इनकी दो ही दिशा है या तो आगे बढ़ने की या तो पीछे जाने की। कोई भी जीव एक स्थिति में कभी टिक सकता नहीं, या तो वो आगे बढ़ जाएगा या तो पीछे चले जाएगा। इसलिए हम तो हमारे नित्य स्वाध्याय में ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि हम मुमुक्षु बने हैं लेकिन पुराना मुमुक्षु हमें नहीं रहना है, मुमुक्षु में पुरानापन हमारा नहीं रहे, हम मुमुक्षु बने हैं शीघ्रातिशीघ्र हम ज्ञान दिशा को प्राप्त हो जाए ऐसी हमारे प्रयास और पद्धति कार्य की होनी चाहिए। अगर हम उस समय में ज्यादा काल रहेंगे तो हम कुछ न कुछ पीछे पता हो कि नहीं पता हो हमारा परिणाम पीछे ही पीछे नहीं। पूर्णता के लक्ष्य में आने वाला और पूर्णता के लक्ष्य से आगे बढ़ने वाला वो संज्ञा में नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा ये बात हमने जब लिया है तो बात की जो चर्चा हमने इसमें आगे जा करके की है। यहाँ नहीं यहाँ यह जान लेना भी अति आवश्यक है कि जिस जीव को शुद्ध अंतकरण से तेरी मंदाई वाली बात है शुद्ध अंतकरण से जन्मकरण के चक्र से सुनना हो उसे ही पूर्णता का लक्ष्य निश्चित होता है। भीतर में कहीं भी संसार की आशाएं या अपेक्षाएं भी वहां तक पूर्णता का लक्ष्य हो सकता नहीं है, सिर्फ अंतकरण में ही होता है। अतः धर्म के इच्छुक सभी जीवों को सर्वप्रथम अपने अंतःकरण की जांच करनी आवश्यक है। पहले वो कर ले, वरना तो संयोग ही नहीं कहेंगे क्योंकि क्या वो पालतू इधर आएगा, अगर उसको प्राप्त करना है इसलिए तो इधर आए हैं, अगर बोलने का इंद्र क्या आएंगे, लेकिन हमारा भेद नहीं बदला है तो ये बात है, ऐसा हो जाता है।
खाली इधर आए इसलिए इधर आते हैं, समय देते हैं, समर्पण करते हैं,
ठीक है, समर्पण भी करते हैं, समय का भी खर्च करते हैं, पैसा का भी खर्च करते हैं, हमारी शक्ति का भी व्यय करते हैं, ठीक बात है, लेकिन यथार्थ तो करो, बात उतनी है, जो करो वो यथार्थ करो, यथार्थ नहीं करो तो है यथार्थ होगा, किसी को कोई उसका फर्क नहीं है, कोई इलाज है इसका, तो उतना ही कहना कि यथार्थ करना चाहिए तो इसका फल आएगा, यथार्थ करो तो नहीं आएगा, सीधी बात
नहीं आ रहा है इसका मतलब
नहीं हो। ऐसी परिस्थिति पूर्णता के लक्ष्य बनती है कि बननी चाहिए, वरना अनादि में बाह्य पदार्थ में शुभ है, वहां परिणाम चाहे बिना गए बिना रहेगा, तो मेरे को बिल्कुल नजर आ रहा है कि इधर आने का हमारा क्या परिणाम हुआ है, अभी हमको भी पता तो होगा ही कि इतना इतना करते हैं तो कम से कम प्रतिकूलताएं तो नहीं आएगी, अनुकूलता तो बनी रहेगी, ये भाव आए इतना रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें सुख निश्चित किया मतलब उसका निश्चय गया नहीं और इसका ध्येय मिटा नहीं, तो आए जाए रहकर आए जाए नियम करेगा, ऐसी बात है। अतः अपने अंतःकरण की जांच करनी आवश्यक है, जब तक अंतःकरण की शुद्धता पूर्वक पूर्णता का लक्ष्य सुनिश्चित करने में न आए तब तक जीव जो भी धार्मिक प्रवृत्ति करें उसमें यथार्थता ही उत्पन्न नहीं होती है, ये यथार्थता और अयथार्थता के विषय में सिद्धांत है, कैसे यथार्थता आती है और वरना कैसे अयथार्थता रह जाती है, बस ये मूल सिद्धांत के बाद आई है। ऐसी स्थिति में सभी भाव आत्मकल्याण की इच्छा आदि भी ऊपर ऊपर से होते हैं, ये सब ऊपर ऊपर से होने वाले का परिणाम है, तब उनका फल प्राप्त हो, परंतु जिसका अंतर्गत शुद्ध है यानी से यानी कि जिसे छूटना ही है उसे कौन बांध सकता है, जिसको छूटना है उसको बांधने वाला कौन है संसार में, बनता है तो अपने परिणामों से बनता है, जो दूसरे कारण से थोड़ा बनता है, तो जिसको छुटना है इसको बांधने वाला कौन है, उसे बांधने में कोई समर्थ नहीं है, यह समझने आए ऐसी बात है। अच्छा, इस विषय में थोड़ा और स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि जिसको अपना आत्मकल्याण करने की इच्छा है यानी भावना है यानी हमारे ऐसे परिणाम होते हैं कि हमारा कल्याण तो ये ऊपर ऊपर से नहीं हुआ है या अंतर से हुआ है, इसका स्वरूप क्या है, ये प्रश्न हो सकता है, इसकी जांच करने करने के लिए थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि अपने जांच कैसे करें कि अगर अंतर से ये बात आई कि आपको कल्याण करना है छुटना नहीं है संसार में और भटकना नहीं है, तो वो परिणाम ऐसे आएगा कि ये कार्य को हमें किसी भी कीमत से करना है, एट एनी कॉस्ट, इसमें हमें कोई हिसाब किताब लगाना नहीं है, कुछ भी होगा हमारे संयोग का तो कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा देह का भी कुछ भी हो जाए, सबसे ज्यादा सावधानी देह की रहती है, और सहयोगी दे के अनुकूल रखने के लिए ये सब व्यवस्था हम करते हैं। तुम्हारी गुणता दे के अनुकूलता हो सकते बनी रहे बात ही है, उसको ये परिणाम भी आया। तो ये काम हमें किसी भी कीमत पे किसी भाव में कर लेना है, किसी भी कीमत पे कर लेना है। इसमें कोई हमारा कोई शर्त नहीं है, हमारा कोई कंडीशन नहीं है, हम कुछ भी करने के लिए दिया।
इस प्रकार की बात शायद से क्यों नहीं आती
जी,
इस प्रकार की बात शायद क्यों नहीं आती,
इसलिए आते हैं कि हमारी भावना उनको ऊपर है। हम कल्याण करना चाहते हैं लेकिन हमारे रीति से, हमारे पद्धति से, हमारे अनुकूलता से हम करना चाहते हैं तो कभी होने वाला नहीं है। किसी का नाम पसंद है और कुछ नहीं है, कठोर शब्द में कहे तो किसी का नाम पसंद है कि हम हमारी रीति से करना चाहते हैं, हमारी पद्धति से हमें करना है, हमारी परिस्थिति अमुक प्रकार के वो तो करना है वरना हमें आगे नहीं बढ़ना है। ये जो परिस्थिति है कि ऊपर ऊपर की भावना में होती है, अंतर की भावना में तो हम कहें पूरी व्यक्ति का दृष्टांत है हमारे सामने, उनकी सभी जीवन के दृष्टांत है। 15 साल की उम्र में जब उन्होंने क्रांति से दर्द खोला, आप तो जानते होंगे क्या इसके जीवन में घटना घटी थी, तो वो घर छोड़ के निकले, पहने हुए कपड़े थे, कोई सामान तो नहीं लिया, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और देर दिन की ट्रेन की मुसाफिरी थी कराची से भगवान से गई। मैंने 12 से 18 घंटे की मुसाफिरी की, ऐसे अकेले निकल गए। इस उम्र में आज से करीब 60 साल के पहले की बात है, 15 साल की लड़की घर छोड़ के निकल जाए कि कोई अपने समाज में बनने वाली चीज नहीं थी, उस दिन में वो चीज बनी थी। हमने पूछा था, हमने रूबरू में पूछा था कि इतना साहस आपने किस आधार पर किया, ज्ञान तो था नहीं आपके पास, ज्ञानी तो फेल ही नहीं होता, पर मूर्ख को भी क्या अहंकार है, कोई धार्मिक क्रिया में लगे हुए ऐसे कोई खास बात भी नहीं है। किस विचार से, किस अभिप्राय से, किस कारण से, किस आधार से आपने इतना जो कदम उठाया, तो कठोर कदम उठाया था, चतुराल पर छोड़ा, और अपने जो बड़ी बहन की जहाँ माता जी को बचपन में साथ मिली थी तो बड़ी बहन के मनोभ थे, पिता घर भी छोड़ दिया, दोनों पर छोड़ते हुए निकल, पिताजी जमा आई तो पिताजी जमा आई, लेकिन तो बिना कहे और बिना किसी के जो बड़े लोग हैं घर में गुजर गए उनको बिना पूछे, उनकी सम्मति के लिए बिना क्यों निकले, क्या कारण बनाया था, तो मेरे मन में वो विचार रहता था। क्या जवाब दिया करें कि मेरे मन में वो विचार रहता था कि कराची में कहीं सक्षम मिलता नहीं है, नजर डालने से कहीं मिले ऐसा आकार भी दिखता नहीं है। यहाँ का जो परिस्थिति है क्षेत्र का बिल्कुल बिना सत्संग जीवन पूरा कर देने के हो जाएगा, और 15 साल तो मेरी बीत गई सारी थी, क्या रोक क्या लगा उसका कि मेरे आने से तो 15 साल बीत गए, मैं तो लेट हो गई हूँ, ऐसा लगा 15 साल की उम्र में उसको देरी कर दिया ऐसा क्या, अब मेरे को समय मौका माने की मेरे को सहन नहीं होने वाली बात है, तो सहन नहीं कर सकते बिना सत्संग वाली परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा सत्संग की मांग कोई निश्चित नहीं था कि तुमको इधर आ जाओ इधर ये सत्संग मिलेगा, कहने समय गुरु है इधर बैठे हैं हमको मिलना है, कोई बात निश्चित नहीं थी, कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई बात निश्चित नहीं थी, लेकिन उतनी बात अवश्य निश्चित थी कि अगर मिलेगा तो वहां मिलता है। मेरे को पानी चाहिए, पानी बिना मैं मर जाऊंगा, अगर पानी मिलेगा तो इधर मिलेगा, मुझे इधर जाना चाहिए, वहां पानी है नहीं है, है तो मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात पीछे के पीछे देखने वाली है, पहले तो वहां मुझे जाना चाहिए, इसके पहले कोई गारंटी दे सकता है, तो विदाउट गारंटी उन्होंने ये तरह उठाया कि सत्संग अगर मिल सकता है तो वहां मिलेगा, मुझे यहाँ जाना ही चाहिए, वहीं रहना चाहिए, वहां खोज करनी चाहिए, अगर मिल जाएगा तो मैं मेरा काम करूंगी, मेरा कल्याण अवश्य करूंगी, क्यों कि मेरे को किसी जीवन में
कहा
आप समझना चाहिए कि हमारा अंतकरण ही शुद्ध नहीं है, ये समझना चाहिए।
उपासना करने में
द्रव क्षेत्र का लाभ में ध्यान नहीं मिलता हो तो द्रव क्षेत्र का लाभ जहाँ नहीं मिलता है, मिलने का जहाँ संभव नहीं है, तो उस द्रव क्षेत्र का लाभ को छोड़ देना चाहिए। जैसे आप लोग कहाँ के हैं, पिताजी के पिताजी कहाँ के थे, राठी के थे ना, है इधर कलकत्ता में क्यों आए, 1500 किलोमीटर का अंतर है। लाठी छोड़ करके 1500 किलोमीटर ये पश्चिम में है हिंदुस्तान के इलाके में और ये हिंदुस्तान के पूर्व दिशा में है, इतना लंबा अंतर क्यों आए हैं कि वहाँ पैसा नहीं मिलता था, वहाँ रोटी नहीं मिलती थी, यहाँ पैसा रोटी मिलता है। बात करें जैसे हमें जहाँ मिलता है वहाँ जाते ही नहीं जाते, वहाँ पर एक तरह की लगा रहे कि क्या पूरा लाठी खाली होंगे कि कलकत्ता आ गया क्या, हमें रहने वाले जिंदा रहते हैं, मर नहीं जाते, फिर भी हमने क्यों छोड़ा कि हमें जो हालत में वहां रहते हैं लोग ऐसी हालत में नहीं रहना है, हमको कोई बड़ी अपेक्षा है कि बड़े शहर में जाएंगे ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो जैसे कुछ गारंटी देता है क्या चलाने से मिल ही जाएगा, सब गारंटी मिलता है क्या, गारंटी नहीं मिलता है, लेकिन हमको दिखता है कि अगर मिल सकता है तो वहां मिलेगा। लाठी में कोई करोड़पति होने का कोई बिजनेस इधर तो दिखता नहीं है, 10,000 के 8,000 की आबादी है, इसमें करोड़पति कैसे बनेंगे, यहाँ तो व्यापारी शाम तक 1600 रुपये का मिलता है, 1600 रुपये में मुनाफा कितना होगा, 25-50 रुपये का होगा, करोड़पति कहाँ से बनेंगे, बनेंगे तो कलकत्ता में बनेंगे भाई, भले ही किसी ने गारंटी नहीं दिया था लेकिन आए कि नहीं आए, तो कैसे था वो, जीव को समझाने की जरूरत नहीं है, अपना फायदा कहाँ कैसे होता है ये बनिए को तो समझाने की जरूरत नहीं है, बनिए लोग इसमें बहुत सकते होते हैं अच्छे चल जाता, तो वो तो बदलता है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता हिसाब किताब वहाँ कोई नहीं लगाया जा रहा, जैसे कैसे भी इसमें काम करना है। जिनका व्यक्ति मुद्दा हो जाता है बदल गया, संसार की कोई गाड़ी नहीं रहती तो मुद्दा ही होने, एक नया जीवन एक नई नई चेतना पैदा होती है, नई दुनिया में प्रवेश होता है, यही बात है। ये जो दुनिया है वो तो दुखी होने के लिए है, सुखी होने के लिए नहीं है। इस पूर्णता के लक्ष्य को परम कृपालु देव श्रीमद जी ने दृढ़ मोक्षेच्छा कही है, उनके अपने शब्द में उन्होंने इसी सिद्धांत को दो ही शब्द में रख दिया है, दृढ़ मोक्षेच्छा, मोक्ष मैंने पूर्णता, दृढ़ मैंने यथार्थ रूप से वास्तविक रूप में। उन्होंने पत्रांग 254 में यों फरमाया है कि दृढ़ मोक्षेच्छा न होने पर मोक्षता में उत्पन्न नहीं होती है, और यही जीव का सबसे बड़ा दोष है। क्या कहा, ऐसा नहीं कहा कि पाप के परिणाम होते हैं गृहस्थी में, ये सबसे बड़ा दोष है, व्यापार धंधा करते हैं कुटुंब परिवार का व्यवसाय होता है इसलिए कुटुंब परिवार की प्रवृत्ति बड़ा दोष है, व्यापार धंधा इंडस्ट्रीज में बड़ा दोष है, ऐसा नहीं कहा, इसमें कारखाना लगाए बड़ा दोष है, इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा, मंदिर आना चाहिए मंदिर में आते बड़ा दोष है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, ये दृढ़ मोक्षेच्छा वाली मोक्षता उत्पन्न नहीं हुई जीव का ये सबसे बड़ा दोष है, तो यही है। अगर दृढ़ मोक्षता नहीं आई तो फिर जो परिस्थिति रही उसमें कहां से कहां पहुंच जाएंगे कहना मुश्किल है। कोई नहीं कह सकते कि हाँ कैसे ले जाएंगे। यहाँ बात करिए, यहाँ जो बात की है वो साध्य पर्याय की बात की है गुरु ने। और अरे ज्ञानी ने भी दृढ़ मोक्ष में भी कृपाण तो सब एक क्लियर कर दिया, मोक्ष इच्छा मोक्ष पर्याय की इच्छा बात किया है। इसलिए
अपने आप में
हमारी हमारी जो दशा है उसमें दुख है और हमारे दशा में हमें सुख भोगना है। ये जो शक्ति रूप मोक्ष है या शक्ति रूप सुख है वो तो शक्ति रूप ही हमेशा रहता है, क्या भोगने में तो पर्याय आती है और दुख भी हमारी पर्याय में है। इसका हमें निषेध होता है कि हमें दुख नहीं चाहिए। अंदर में सुख शक्ति अनंत शक्ति शक्ति भरी है,
कारण रूप से अंदर में शक्ति
हाँ है, कारण रूप से तो जग है कि हम कारण बना रहे, तब कारण रूप अनादि से बना ही नहीं रहे हैं अनादि से, लेकिन उसका कारण हमने कभी बनाया नहीं है। तो कारण रूप बनाने के लिए कारण शुरुआत कर गए, उसको कारण बनाने के लिए यानी उसका आश्रय हो जाए ऐसा होने के लिए कहां से शुरुआत करना, यहां से तथा शुरू होती है। तथा किस तरह से शुरू होती है, किस तरह से शुरू होती है कि मूल में तो जब हमारा पूर्ण स्वरूप का आश्रय आएगा तभी हमें धर्म की शांति की प्राप्ति होगी। इस तरह तो होने वाली नहीं है, वो बात फाइनल जो है हमारे जीवन में वो ठीक है। पर्याय का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन ध्येय तो बनाना ही पड़ेगा। बिना ध्येय हमारा अनंत काल से संसार का ध्येय है तो छूटेगा नहीं। जैसे कि हम हमारी स्थिति देख रहे हैं कि हमने गुरुदेव की कृपा से वो बात को जान लिए कि भैया दो समाधि थे स्वभाव का आश्रय करने से ही हमें प्रश्न होगा। जब से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी, जब से ही हमारा कल्याण चालू होगा, इसके पहले हमारा कल्याण या शांति हमको सुननी होगी। ये बात जानने के बावजूद भी हम आश्रय तो नहीं ले रहे हैं, आश्रय हमारा विकारी परमात्मा स्वभाव का हमें लेना चाहिए। वो बात क्या हम अच्छी तरह नहीं जानते क्या, ये बात हमारे जानकारी में नहीं आई क्या कि आई है, फिर भी हम इतने सालों तक जीवन की संध्या में आ गए फिर भी आश्रय नहीं ले सकते हैं, ये बात भी एक हकीकत है। क्यों इसका स्थित करता चलते ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों, हमारा क्या शास्त्रार्थ में भूल रही है कि नहीं, आ जाइए हमारे साथ चर्चा करने में, हम हर कथा का आपको समझा देंगे। समझते नहीं ये समझा सकते हैं फिर भी आश्रय नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है, उसका कारण भी चर्चा यहां से उठाई है और उसका कारण भी गुरुदेव ने दर्शाया है। और यही ज्ञानी का मार्ग है, यही ज्ञानी की आज्ञा है। हमने शास्त्र तो पढ़ा लेकिन ज्ञानी की आज्ञा तो नहीं पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है, यही कारण है। तो ये चर्चा का जो महत्व है वो इसी कारण है। ऐसे हमारे समाज के बिना तो वो बात भी नहीं जानते लोग, दिगंबर संप्रदाय वाले भी नहीं, श्वेताम्बर संप्रदाय वाले को कुछ नहीं, अन्य वाले को कुछ नहीं, लेकिन इसका आश्रय करने से ही समय कसम मिलेगा। इतनी बात हमारी जानकारी में अच्छी तरह आ गई है फिर भी हमारे हालत यों की यों रही है, चौकी क्यों रही है, क्या कारण है इसके पीछे, इसकी खोज अगर हम करेंगे तो हमें गुरुदेव का ये मार्गदर्शन मिलता है कि हमारा प्रारंभ ही सही रूप से नहीं हुआ है। हम मुख्य कहे जाते हैं, कहलाए जाते हैं, वास्तव में मुख्य का दृढ़ मोक्ष इच्छा से ही चालू होती है, पूर्णता के लक्ष्य से ही साधु होती है, ऐसी नहीं हुई है। इसलिए वो कहने मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। पत्रांग दोषों चौपल ने इसको बड़ा दोष बताया है, सबसे बड़ा दोष, बड़ा दोष नहीं किंतु सबसे बड़ा दोष है। प्रकृतिगत दोष अनेक प्रकार के हैं, उन सबको गौण या गौण करके उन्होंने इस सबसे बड़े दोष, क्या सबसे बड़े दोष की ओर हमारे मन को ध्यान आकर्षित किया है। ये 254 में उन्होंने ये ध्यान आकर्षित किया है कि ये सबसे बड़ा दोष तो ये है, तुम छोटे मोटे दोष को मिटाना चाहते हो कि हमें क्रोध नहीं हो, हमें मान नहीं हो, हमें माया नहीं हो, हमें लोभ नहीं हो, हमें वो नहीं हो, वो नहीं हो, हमें खान पीने में ये नहीं होना, हमें साथी होना ये नहीं होना, क्या हो फलाना हो ये हो, लेकिन सबसे बड़ा दोष मिटाया नहीं। और मनुष्यता का स्वरूप दर्शाया है वहां पर, वहां पर उनके शब्द है वो बॉल टाइप में लिए गए हैं, शब्द है मुमुक्षुता यह है कि सर्व प्रकार की मोहाशक्ति से अपूरा कर एक मोक्ष के लिए ही यज्ञ करना। किसी कीमत से हमें चाहिए पूर्ण शक्ति चाहिए, इसके लिए हमारे कोई शर्त नहीं है, टोटली सरेंडर हो जाते हैं अपने ध्येय के पीछे, उसको ध्येय की प्राप्ति अवश्य अवश्य होती ही है। ये बहुत सुंदर लक्षण दिया है कि संसार के अनेक प्रकार के महाशक्ति के अनेक को अपने अपने उदयवश प्रथम करता है, हर एक जैसा जिसको उदय हो, और इस महाशक्ति के प्रसंग में जीव को संसार में रस आता है, यानी कि प्रसंग को रस आने से ये कह सकते हैं कि मीठा लगता है। जैसे कि हम व्यापारी है, हम चाहते हैं कि हमारे बैलेंस शीट में हमारा पूरा एक साल में जो भी परिश्रम किया उसमें हमें 2-5 लाख मिल जाना चाहिए या 5-10 लाख मिल जाना चाहिए। इसकी जगह कोई ऐसा प्रसंग बन गया कि 3 गुना 10 गुना पैसा मिल गया, 5 लाख चाहता थे 50 लाख मिल गया, हमारी गिनती से बाहर हमारी जो रस की चीज है वो जब आ जाती है तो रस बढ़ जाता है। क्या होता है, हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, हमारा रस बढ़ जाता है। ये सामान्य तौर से हर एक को बनता है, जिसको जो चाहिए वो चीज जिसको मिल गई रस बढ़ जाएगी। अब यहाँ मुमुक्षुता जब उत्पन्न होती है तो क्या होता है, एक विलक्षण प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है, इसका निर्देशन मूल निर्देश किया नहीं करते कि उनको सर्व प्रकार में किसी भी महाशक्ति का प्रसंग हो उसमें उसको अपुलाई होती है। गुजराती में हम कहते हैं मुंजवण होती है, अपुलाई लेने क्या कि जैसे कोई हमारा नाक बंद कर दे, क्या हालत होगी हमारे भीतर में, श्वास हवाई बंद होगी, क्या होगा, सहन नहीं होगा। ऐसे ये महाशक्ति के प्रसंग में सामान्य तौर से रस आता है, या मुमुक्षुता अगर उत्पन्न हुई यानी पूर्ण मुक्षता का जिसको, पूर्ण सिद्धि का जिसको जन्म हुआ, उनकी हालत बदल गई, भीतर की दुनिया बदल गई, इनकी हालत बदल गई, उसी जगह पे उनको अकुलता यानी मुंझवण होने लगेगी। अरे 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 ये क्या हो रहा है, मुझे कोई बड़ा नुकसान होगा, इसने मुझे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उसको भय लगता है, ये क्या हो रहा है। तो वो खिलाफी आती है, अनुकूल सामग्री आती है, अनुकूल सामग्री का प्राप्त होती है और उसमें उसको भय लगता है। हाँ, रस आने के जगह भय लगता है, क्या रस आने की बदली में उसको मुंझवण होती है, अनुकूलता लगता होती है, भय लगता है कि मेरा मुझे बहुत नुकसान करने वाला है, मुझे यहाँ से छूटना है, इसी कारण मोक्ष के लिए यत्न करना है, मुझे यहाँ से छूटना है, इस रस्ते में ऐसा रस्ते नहीं होना चाहिए था कि मेरा मेरी शांति को पारे, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, ये दुख का कारण होगा। सब संयमवादी आगे की चीज है, इस भूमिका की चीज नहीं
है, जो बुलाया उसके
जो तप है संयम है तो पंचम गुण स्थान पे हमारे जैन दर्शन में सम्यक प्रकार से पालन होता है, इसके पहले कोई करते हैं तो उसमें सम्यक प्रकार नहीं आता, अपनी मनमानी कुछ भी कर
लीजिए,
मस्ति से आतुरता आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो फिर त्याग का विचार आए तो सही है, लेकिन उसमें तो रस जमा रहा है और वस्तु का हम त्याग कर लेते हैं, ये तो भीतर में तो गंदगी है और ऊपर की सफाई है, ये बात हुई। तो यहाँ तो आकुलता के कारण यहाँ से छूटने का भाव आता है, ये मोक्ष के लिए भी यत्न करना है, ऐसा एक सिंटम जो है, चिन्ह है मुमुक्षु की भूमिका का, तो यहाँ पर बाबूदेव ने इसका निर्देश किया है। अब जो आगे की बात है, महाराष्ट्र में बिल्कुल पूरा होता है, कल सुबह चिंतापुर में जितना हो सकेगा उतना लेने की करेंगे, पूरा हो भी जाए पूरा नहीं भी हो जाए कितना हो सके जी, हाँ यहाँ ये आर्टिकल पूरा होता है या इसमें ही पूरा होता है, ये जो लेख है वो पहले आधा को अगले अंक में आ गया, गतांश से आगे जो है वो मार्जिन जब पूरा होता है। वो तो पूरी हो गया है, इसे कल सुबह यही लेंगे इतना आगे हो सके तो ये उसे कराएंगे।
यहाँ और तो कोई नहीं है, मतलब कोई बिजी रहना उसमें और ऐसे नहीं आएंगे।